Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Ram Hare Rama, Rama Ram Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Bolo bolo,
se pukaro,
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Sab log haath chalo, karo.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jai Gopal,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे
हरे हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे पुकारो हृदय से पुकारो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरि बोल
हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे राधा मदन मोहन राधे जय राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन राधे श्रील प्रभुपाद की श्री श्री राधा मदन मोहन भगवान की संबंध देव राधा मदन मोहन जी की परोली धाम की निताई गौर प्रेमानंदे सब लोग बोलिए जय जय श्री राधे ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामय्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातां सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च अभी आगे बढ़िए कुछ भी नहीं है मंत्र वो जयतां सुरतौ पंगोर आप मेरे बात बोलिए जयतां सुरतौ पंगोर जयतां सुरतौ पंगोर मम मंद मतिर्गति मम मंद मतिर्गति मत्सर्वस्व पदाम्भोज मत्सर्वस्व पदाम्भोज राधा मदन मोहन राधा मदन मोहन श्री राधा मदन मोहन हरे कृष्ण। तो भगवान की असीम कृपा से, गुरु महाराज की असीम कृपा से, परम गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद जी की असीम कृपा से, सारे गुरु परंपरा के असीम कृपा से हम अभी करौली में आ गए। राधा मदन मोहन जी के चरणों में आ गए। भगवान हमेशा भक्तों के भाव को प्रतिसाद देते हैं, ऑलवेज रिस्पॉन्डिंग टू द भाव ऑफ द डिवोटीज। इसलिए भाव ही सब कुछ है, भाव है तो भगवान है, भाव है तो भगवान की कृपा भी है। तो सारा प्रयास जो है वो भाव निर्माण करने का, और भाव जब निर्माण होता है तो क्रिया भी बदलती है ना। जैसे हम यात्रा में आ रहे हैं, बहुत लोग आ रहे हैं, लेकिन इस यात्रा में आने का परिणाम आपके भक्ति के जीवन में परिवर्तन के रूप में होना चाहिए, आपके व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, सुधार आना चाहिए, प्रगति आनी चाहिए। ये यात्रा को हम पिकनिक में अपने आप बदल सकते हैं, और इस यात्रा को दिव्य हम ही बना सकते हैं, और उस यात्रा से आध्यात्मिक उन्नति भी हम ही कर सकते हैं। सब हमारे हाथ में है, इसमें से कितना सुनना है कितना नहीं सुनना है हम तय कर सकते हैं, और सब कुछ सुनना है और सब कुछ जीवन में उतारना है ये भी हम तय कर सकते हैं। या इसी यात्रा में पूरा जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करना है ये भी हम तय कर सकते हैं। तो यात्रा में समझो 200-250 आप लोग आ गए, हर व्यक्ति अलग अलग प्रकार से प्रगति करेगा, सेम प्रगति नहीं करेगा, इसका जो जो भाव रहेगा वैसा वो प्रगति करेगा। जिसका भाव बहुत ही ऐसे ही घूमने के मूड में रहेगा तो वो बिल्कुल प्रगति नहीं करेगा, और जिसका भाव जितना हो सके उतना ग्रहण करके जीवन में उतारने का प्रयास होगा वो शत प्रतिशत प्रगति करेगा। तो आप लोगों के हाथ में है कि जब हम बोलते हैं पुकारो तो पुकारना कि नहीं पुकारना, ये आपके हाथ में है। हम तो बोलते रहेंगे पुकारो पुकारो पुकारो, हमको भी किसी ने कहा था पुकारो तो हमने पुकारना शुरू किया था। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र का जप है ना, ये भी एक पुकार है, आत्मा की पुकार है, मैकेनिकल नहीं है काम ही। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, कल का गुलाब जाम कितना अच्छा था, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण, परसों की शाम का राजमा कितना अच्छा था, हरे कृष्ण आज शाम को क्या होगा, हरे कृष्ण एक प्रकार का जप हो गया। भी इसमें भी लाभ है, ऐसा नहीं कि लाभ नहीं है, लेकिन राधे श्याम लेकिन जब ये महामंत्र एक पुकार के रूप में होता है, दर्द भरी पुकार, कशिश भरी पुकार, हृदय द्रावक पुकार जब होती है ना तो भगवान भी पिघल जाते हैं। और हमने एक अनंत बार सुना है कि भगवान और राधा रानी दोनों सुनने के लिए बैठे हैं, दे वांट टू हियर यू, कैसे पुकार रहे हैं। जैसे आप लोगों के बहुत सारे लोगों के बच्चे होंगे है ना, और जितने लोगों के बच्चे हो गए सब माओं को जान, सब माँ जानते हैं जितनी माएं यहाँ बैठी हुई, कि बच्चे की पुकार में क्या अंतर होता है, हाँ किस पुकार को रिस्पॉन्ड करना है किस पुकार को छोड़ देना है, बराबर जानते हैं। कोई ट्रेनिंग आपको किसी ने दिया नहीं है, लेकिन बच्चे के साथ केवल होने से आपको पता चलता है कि इसको निग्लेक्ट करो। और कई बार ऐसे पुकार होती है कि आप सब सब कुछ फेंक के भाग जाते हैं तुरंत। वो डिफरेंस क्या है उसके अंदर? उस पुकार में दर्द होता है, ऐसी जानलेवा दर्द होता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या हो गया, कोई भयंकर घटना हो गई, ऐसा लगता है। बच्चा जब गार्डन से पुकारता है मम्मी, तो आप पूरा सब बंद करके भाग जाते हो, कुछ हो गया अभी। और ऐसे बोलते मम्मी देखो ना, वो तंग कर रहा है मुझे, बॉल नहीं दे रहा है। ठीक है ठीक है, संभाल लो अपने आप को। तो राधे राधे, जय श्री राधे। तो ये समझ लेना कि हम इनके घर में घुसे हैं, और बेचारे अपने ही बीच में जा रहे हैं। तो जैसे माँ अपने बालक की पुकार को समझ सकती है ना अलग अलग तरह से, और माँ भी वो पुकार की टाइप को तरीके को समझ के प्रतिसाद देने का निर्णय लेती है, तो भगवान नहीं समझेंगे कि आपकी पुकार में क्या है। भगवान भी समझेंगे, भगवान तो भगवान है, हम तो दुनिया की माँ और पिताजी हैं। ये भगवान तो परम पुरुष हैं। परम पुरुष मतलब परम पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, गोलोकेश्वर, अखिल ब्रह्मांडेश्वर श्री कृष्ण भगवान। इसलिए हम कहते हैं कि अगर पुकार ही रहे हैं तो समय भी दे रहे हैं, इधर समय तो दिया है आपने ऑलरेडी, पैसे भी खर्च किए, समय भी दे रहे हैं, पुकार भी रहे हैं, समय जा भी रहा है आपका पुकारने में, तो क्यों ना उस पुकार को हृदय से पुकारें, और क्यों ना उनका ध्यान हमारी ओर आकर्षित कर लें। तो फिर इतना दूर से आने का, समय बिताने का कुछ लाभ होगा आपको। इसलिए हम बोलते हैं, बुरा नहीं मानना, मैं बार बार बोलता हूँ पुकारो पुकारो, आप क्यों नहीं पुकार रहे हो, सो रहे हो क्या, पुकारो। कारण यही है कि आपका हर क्षण जो आपने यहाँ बिताने का संकल्प किया है, बिता रहे हैं, वो हर क्षण का आपको पूरा लाभ मिले, यही हमारी भावना है बस। और ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, अभी हम लोग कहाँ पर आ गए हैं, करौली, राधा मदन मोहन जी के पास है। मदन मोहन जी कौन है? संबंध अधिदेवता। कल हमने आपको समझा ना संबंध अभिधेय प्रयोजन, तो संबंध के देव मदन मोहन जी है, और वो हमको उनका उनके चरणों का संबंध प्रदान करते हैं। लेकिन उनके चरणों का संबंध प्रदान करने के पहले एक स्टेप होती है, वो ये है कि दुनिया के साथ में भौतिक संबंध तोड़ देना। दुनिया के साथ जो भौतिक भोग लेने की भावना है ना हमारी, टू एंजॉय, टू कीप ऑन एंजॉयिंग, हम भक्ति में आने के बाद भी एंजॉय करने का प्रयास करते हैं। हाँ, जब तक भक्ति में एंजॉय कर रहे हैं तो ठीक है, भक्ति की जो कार्यकलाप है उसमें आप आनंद ले रहे हैं तो अच्छी बात है, लेकिन भौतिक भक्ति में आने के बाद भी भौतिक दुनिया के आनंद लेते रहना, 31st के डिस्को पार्टी में जाना, भक्ति में आने के बाद भी किटी पार्टीज में जाना, गपशप करना, फिल्म मैगजीन पढ़ना, नई फिल्म शुक्रवार को कौन सी आ रही है कहानी पहले से पढ़ लेना, उसके प्रीमियर को जाना, सुना है इन्होंने 114 कोटि का बिजनेस किया है, चलो ये फिल्म देखनी चाहिए, जब भी कर रहे हैं तो वो भी कर रहे हैं, है ना। मतलब इंद्रिय भोग, सेंस ग्रेटिफिकेशन, ये पहले हमको समझना है सेंस ग्रेटिफिकेशन क्या होता है। सेंस ग्रेटिफिकेशन यानी इंद्रिय का भोग, इसका मतलब है कि भगवान को छोड़कर, भगवान को अलग रख के जब हम दुनिया की वस्तुओं को भोगना चाहते हैं, भोगना प्रयास करते हैं, उसको इंद्रिय भोग कहते हैं। वैसे प्रसाद पाने को भी इंद्रिय भोग होता है, लेकिन वो प्रसाद, भगवान को भोग लगाकर प्रसाद ग्रहण करना ये भी आनंददायी है, लेकिन वो इंद्रिय भोग के कैटेगरी में नहीं आता है। आप मसाला डोसा खा रहे हो तो इंद्रिय भोग हो गया, लेकिन वही आपने भगवान को भोग भी लगाया और वही मसाला डोसा प्रसाद के रूप में खाया तो वो इंद्रिय भोग नहीं है। और जीव जो है वो आनंदमयोभ्यासात, यानी वो आनंद के खोज में, स्वरूप ही आनंद है, तो उसमें आनंद लेने की प्रवृत्ति होना कोई पाप नहीं है। और आनंद लेना भी कोई पाप नहीं है, लेकिन आनंद हम किसमें लेते हैं वो तय करता है कि पाप है कि पुण्य है। जब आनंद भगवान के साथ में लेते हैं, भगवान के संबंध में, भगवान के विषय में लेते हैं, तो वो भक्ति है। भक्त लोग बहुत मजा करते हैं, ये मत समझना कि भक्त लोग बहुत तपस्या में तड़पते रहते हैं, दिन रात तड़पते रहते हैं कब भगवान मिलेंगे, उसके बाद में आनंद शुरू होगा, ऐसा नहीं है। जिस दिन भगवान का नाम ले शुरू कर देते हैं, प्रसाद पहली बार खाते हैं, पहली बार कीर्तन में नाचते हैं, तभी से आनंद शुरू होता है। जब 4 फरवरी को 1983 में जब मैं मंदिर में पहली बार गया था, तो महाप्रसाद खाया था मैंने, उसका आनंद मुझे आज भी याद है। और मैं पूछता रहा कि क्या है इसके अंदर, इतना स्पेशल क्या डाला आपने, पूछता रहा कई देर तक, पूछता रहा बहुत देर तक, मतलब आनंद हुआ ना मुझे। घर में माँ को जाके बताता रहा कि ये ऐसे दाल क्यों बनाते हो, ऐसे बनाओ मंदिर जैसे वगैरह वगैरह, लेकिन उन्होंने बोला कि रहस्य की बात इसमें एक ही है कि जो भी हम आपको दे रहे हैं वो भगवान को भोग लगा कर दे रहे हैं, इसलिए उसमें वो स्वाद है, इसलिए उसमें वो आनंद है। तो शुरू से मोमेंट वन, पहले क्षण से ही आनंद प्राप्ति हो रही है, ऐसा नहीं कि नहीं हो रही है, और मिलनी भी चाहिए और आपको लेना भी चाहिए, उसमें आपका स्वभाव है वो। लेकिन जब भगवान को छोड़कर हम आनंद लेने का प्रयास करते हैं, तो फिर केवल बंधन में फंस जाते हैं, जिसका परिणाम अंतिम तक दुखी होता है। शुरू में भोग का आनंद मिलता है थोड़ा सा, उसके बाद में दुखी दुख, दुखों का बंधन निर्माण होता है। तो इसलिए ये जो भगवान को भूलकर, हाँ बार बार मैं दोहरा रहूंगा कि आपके मन में फिट हो जाए ये बात, भगवान को छोड़कर, भगवान को अलग रखकर, इंडिपेंडेंटली जब दुनिया की वस्तुओं का भोग लेना चाहते हैं, तो वो बहुत दुखदायी होता है। और तब तक आत्मा को सही आनंद जो मिलना चाहिए, उसका हक है, वो आनंद नहीं मिलता है। लेकिन हम जब भगवान को जोड़कर अपने जीवन में आनंद लेते हैं, तो वो आनंद भी चिरंतन होता है, वो आनंद भी दिव्य होता है, और वो आत्मा को संतुष्ट भी कर लेता है, साथ साथ भगवान को भी संतुष्ट कर देता है। तो इसलिए ये बात कहां से निकली थी, भगवान से संबंध जोड़ने की। कोई आपको वस्तु ऐसे हाथ में पकड़ने के लिए दे दो, मिल भाई दो मिल भाई, ये वस्तु ऐसे मैंने पकड़ी हुई है, मुझे बालक ने ऐसी वस्तु पकड़ी है ना, और ये समझो बहुत गंदी वस्तु है, मुंह में डालने से समझो डायरिया हो सकता है ऐसे, और बच्चे के हाथ से आपको ये छुड़ाना है, तो क्या करेंगे आप, दो पकड़ो तो खींचो खींचो, दूंगा क्या मैं, नहीं दूंगा, आप कितना भी खींचो मैं नहीं दूंगा उसको, वो कैप दे दो, हाँ ये बहुत अच्छा है ना, ये मुझे अच्छा लगा, उससे सोच रहा हूं कि ये इससे मुझे इससे ज्यादा आनंद इसमें मिलेगा, जब ये दिखाएंगे तो मैं तुरंत उसको छोड़ दूंगा, लेकिन ये बिना दिखाए अगर आप उससे चिन्ना कोशिश करोगे तो ये दूंगा क्या मैं, नहीं छोड़ पाऊंगा उसको। बच्चा बच्चा ऐसा ही होता है, कोई खिलौना मुंह में डालता है तो डायरिया होता है, हम उसको उसके हाथ से खींचना चाहते हैं, लेकिन वो बच्चा बार बार चिल्ला चिल्ला कर रोता है, आपको मजबूर करता है वो देने के लिए, लेकिन आप कोई बढ़िया अट्रैक्टिव खिलौना उसको दिखाएंगे तो वो तुरंत छोड़ के उसको पकड़ लेगा तुरंत। यही हमारे जीवन का सिंपल सा रहस्य है। अगर भगवान को पकड़ना है आपको, भगवान के संबंध जोड़ना है, तो ऐसे दो नाव में पाँव रखना नहीं मुमकिन है, दो बोट में पाँव रखा है, शायद कौन सी बोट आगे जाएगी उसमें जाए चले जाएंगे, दोनों में पाँव रखा है तो क्या होगा, वो दोनों में पाँव रखा हुआ आदमी जो है ना वो डूब जाएगा बीच में, निश्चित रूप से डूब जाएगा। तो भगवान के साथ अगर संबंध करना है तो पहले भौतिक दुनिया से संबंध कट करना पड़ेगा। तो आप कहेंगे कि पत्नी को छोड़ देना है, पति को छोड़ देना है, नौकरी छोड़ देनी है, सब कुछ छोड़ देना है क्या आज से, नहीं नहीं, प्रभुपाद जी कहते हैं कि छोड़ना कुछ नहीं, आपको काली कृष्ण को जोड़ देना है उसके अंदर। पत्नी जो है वो उसको भोग्य वस्तु के रूप में मत देखो, भगवान की सेविका के रूप में देखो, भगवान के अंश के रूप में देखो, और भोजन की वस्तु को केवल भोग के लिए मत देखो, भगवान का प्रसाद है ये, भगवान की कृपा है, उस भाव से ले लो। वस्त्र पहना है तो भगवान के भक्ति के अनुकूल वस्त्र पहनो, अच्छे अच्छे वस्त्र पहन सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बहुत पैसा कमा सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, पैसा कमाने में कोई पाप नहीं है, पैसा कमाकर अगर इंद्रिय भोग के लिए इस्तेमाल किया तो वो पाप है, और पैसा बहुत कमाया और भगवान की सेवा में लगा दिया तो उसमें कोई पाप नहीं है, उल्टा वो पैसा ही आपको भगवान तक पहुंचा देगा। ये माइक्रोफोन है अभी, हाँ इतना देखो हाईटेक माइक्रोफोन है, सब कुछ है यहाँ पर, वीडियो है, वो इतना कॉस्टली स्पीकर है, वो भी नया कैमरा भी लिया है, आगे आएगा दुबई से, अगली यात्रा में उसको यूज करेंगे। तो कॉस्टली कॉस्टली वस्तु भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसको कोई गंदे चीज फिल्म करने के लिए यूज नहीं करेंगे। भगवान का प्रवचन है, भगवान का दर्शन है, कोई कथा चल रही है, या भगवान के चित्रपट है, या कोई अच्छे भगवान के भक्तों का कोई सीन चल रहा है, तो उसको कैप्चर करेंगे, उसमें लोगों को दिखाएंगे, तो उनको भी आध्यात्मिक उन्नति होगी। तो यह माइक्रोफोन, ये स्पीकर, ये सब कुछ भौतिक है कि स्पिरिचुअल है, बताइए। जैसे यूज करते हैं वैसे, बेचारे में क्या खराबी है? आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा वो, आप उसको भगवान की सेवा में यूज करेंगे तो वो स्पिरिचुअल हो जाएगा। उसी तरह से हमारा जीवन आनंद से, मतलब आनंद का परहेज नहीं हमको, लेकिन आनंद किसमें लेते हैं वो इम्पोर्टेंट है। इसलिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको 100% छोड़नी ही पड़ेगी, कुछ चीजें ऐसी है वो रखिए आप, उसको भगवान को जोड़ दीजिए। तो क्या क्या छोड़ना है? जो छोड़ना ही है, छोड़ना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पर उसको भगवान के साथ लेकर नहीं चल सकते, वो है हिंसा। हिंसा का परिणाम मांस, मांस के आगे मांसाहार। तो ये छोड़ना पड़ेगा कि भगवान के साथ जाता नहीं। हाँ रे, नॉन वेज भी खा सकते हो और भजन भी कर सकते हो, क्या किसी से बोला है कि? देखो जब भी कर रहा हूं ना, दोपहर को नॉन वेज भी खा रहा हूं, कैसे भगवान को पसंद आएगा वो? जिनके हम भी बालक हैं और वे भी उनके ही बालक हैं, तो एक बालक दूसरे बालक को खा रहा है, ये पिता को अच्छा लगेगा क्या? नहीं नहीं, पिता का बहुत सम्मान करते हैं, पिता को भजन करते हैं, बहुत सेवा करते हैं, लेकिन लंच के टाइम पे उनके बच्चे को मार के खाते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। दिस थिंग कैन नॉट गो टुगेदर। उस पर नशा है, हाँ, चाय कॉफी से लेकर ब्राउन शुगर, चरस, गांजा, अफीम तक है, वो भगवान को साथ में जा सकती नहीं है। व्यभिचार है, हाँ, व्यभिचार का मतलब विवाह के बिना संबंध करना, पुरुष और स्त्री, विवाह के बाद संबंध करने को पाप नहीं कहते, विवाह के पहले, विवाह के बिना, ऑफिशियल संबंध होने के बगैर संबंध करना, उसको व्यभिचार कहते हैं, और वो सबसे खतरनाक पाप है। वो चार जो हमारे नियम है ना, उसमें सबसे खतरनाक ये है, सबसे अधिक बदनामी, सबसे अधिक दूषित वो कर देता है व्यभिचार। और चौथा है, क्या बताया हमने चौथा? जुआ। भगवान के द्वारा जो संपत्ति हमको दी गई है, जो साधन दिया गया है, उसका गलत इस्तेमाल करना, दांव पे लगाना, कोशिश करना कि एक दिया जाए तो 10 मिले, उससे 10 मिले तो 1000 मिलना चाहिए, ये जो मनोवृत्ति है ना, उसको जुआ कहते हैं। ये चार चीजें छोड़नी पड़ेगी। झूठ बोलना छोड़ना पड़ेगा, किसी को दुख देना छोड़ना पड़ेगा, गर्भपात करना छोड़ना पड़ेगा, भ्रूण हत्या, गौ हत्या करना छोड़ना पड़ेगा, भगवान के भक्तों का और ब्राह्मणों का अपराध करना छोड़ देना पड़ेगा। ये सब महत पाप है। किसी के घर में आग लगाना, किसी के घर में नुकसान पहुंचाना, किसी का बुरा करना, ये 7 महत पापों में से आता है, उनको त्याग करना ही पड़ेगा। उसको लेकर भगवान की भक्ति नहीं, चलो हम डकैती भी कर रहे हैं और भजन भी कर रहे हैं, शाम को संध्या आरती में जाते हैं और दिन भर डकैती कर रहे हैं, ये नहीं हो सकता है। सम थिंग्स आर एब्सोल्यूट, यू हैव टू गिव अप। तो इसलिए प्रभुपाद जी बताते हैं कि 4 नियम पालन करना बहुत जरूरी है, मांसाहार वर्ज, व्यभिचार वर्ज, नशा वर्ज और जुआ वर्ज। ये तो नेति नेति हो गया ना, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, पकड़ना क्या है वो भी बता दो। ये सब छोड़ने से प्रभुपाद जी बताते हैं, शास्त्र में भी लिखा है कि ये चीज छोड़ने से हम मनुष्य बन जाते हैं। पहले, सबसे पहले जब ये चीज करते हैं तो मनुष्य भी नहीं है। मांसाहार कौन करता है? मांसाहार किसका खाना है? पशु का खाना है। मनुष्य के लिए मांसाहार नहीं बताया, मनुष्य के लिए शाकाहार भी नहीं बताया। अरे बाप रे, अभी क्या करें, भोजन ही छोड़ देना पड़ेगा? नहीं, मनुष्य के लिए प्रसाद आहार बताया है। प्रसाद, शाकाहारी अन्न भगवान को भोग लगा के जब प्रसाद बनता है तो वो खाना मनुष्य का आहार है। और ये 4 नियम छोड़ने से पहले मनुष्य बन जाते हैं, उसके बाद जब प्रसाद खाते हैं तो भक्ति शुरू होती है। ये बहुत बेसिक प्रिंसिपल है। फिर कोई अष्टविकार, आंखों से आंसू आ रहे भगवान का नाम लेने से बहुत दूर की बात है। अभी तो मनुष्य बनना है, एबीसीडी सीखना है हमको। तो मदन मोहन जी उसके भगवान है। जैसे ही आप निर्णय लेते हो कि हाँ मुझे विश्वास हो गया कि भगवान है और मेरे इष्ट हैं, उनकी प्राप्ति मेरे जीवन का उद्देश्य है, तो मुझे अभी ये सब नहीं करना है, उनकी प्राप्ति के लिए जो भी अनुकूल है वो मुझे करना है, तो क्या करना है? फिर गुरुजी बताते हैं उनको क्या करना है। पहले बताएंगे उनका नाम लेना है, उसके बाद बताएंगे भक्तों का संग करना है, श्रीमद् भागवत आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन करना है, भगवान के विग्रहों की पूजा करनी है, नियमित तीर्थ यात्रा करनी है, तुलसी पूजा करनी है, गुरुजी का आज्ञा का पालन करना है, आगे जाकर गुरुजी से दीक्षा लेना है, उनके शरण में जीवन बिताना है, जो कहेंगे वो पालन करना है। इसको साधना कहते हैं। तो हम मदन मोहन जी के चरणों में क्यों आए हैं? इतना दूर वहीं घूम लेते हैं, वहां पे बहुत मंदिर हैं, एक बार दो बार तीन बार जाते हैं, यहां पर क्यों आए? एक्चुअली ये बिगनिंग पॉइंट है। भौतिक दुनिया के भोग भोगने की जो इच्छा है उसको त्याग कर भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा निर्माण करने का स्थान है ये, कि नहीं चाहिए अभी बहुत हो गया, क्योंकि कितना बार कोशिश किया दुखी मिला, कितना बार कोशिश किया दुखी मिलता रहा, अभी और ठोकर नहीं खाना है, अभी आनंद को प्राप्त करना है आपके चरणों में आकर। तो मदन मोहन जी भिक्षा मांगते हैं, जयताम सरतौ पंगोर मम मंद मतिर गति, मतलब मैं इतना मंद गति हूं, पंगु हूं, पंगु मतलब हैंडीकैप, अपंग हूं मैं, कैसे? स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक दृष्टि से मैं अपंग हूं और मुझमें कोई भजन नहीं है, कोई इच्छा नहीं है अच्छी, कोई अच्छे विचार सद्विचार नहीं है, सदाचार नहीं है, सद्गुण नहीं है। ऐसी अवस्था में आपके पास में आया हूं मैं भगवान। जयताम सुरतो पंगोर मम मंद मतिर गति, तो मत सर्वस्व पदाम भोजो, मतलब क्या? मेरा जो भी है मत सर्वस्व, जो भी सर्वस्व मेरा, जो भी मेरी समस्या मेरा है, मेरा मन है, मेरी भावना है, मेरे विचार है, मेरे कार्य है, मेरे व्यवहार है, वो सब मैं आपके पदाम बुझो, आपके दो चरणों के पदाम बुझो, मतलब पद अम्बुज, अम्बुज का मतलब कमल और पद मतलब कमल और अम्बुजो मतलब दो, प्लुरल अनेक वचन हो गया। पदाम बुझ मतलब एक चरण, पदाम बुझाओ दो, तो ये भगवान के दो, आपके दो चरण कमल है, मैं सर्वस्व अर्पण करना चाहता हूं। मत सर्वस्व पदाम बुझाओ राधा मदन मोहन, वापस नौ को कहा गया है, दो है ना, राधा और मदन मोहन, इसलिए दोनों के चरणों में मैं आपके जीवन, अपने जीवन को अर्पण करना चाहता हूं। जब आपको ये दिल से लगेगा ना, तभी आपकी भक्ति शुरू होगी, नहीं तो हम जो भी आज कर रहे हैं वो सब ढोंग है, ऐसे बाहरी एक्टिविटी है, अंदर तक नहीं घुसेगी वो। अपना कैसे होता है मेडिकल में, कैसे होता है वो, जब रेजिस्टेंट ट्यूबरकुलोसिस है ना, वो कहते हैं कि वो दवा जो है ना वो अंदर पेनिट्रेट नहीं कर पाती है, वो ऐसा जाल बना के रखा है उसने कि वो दवाई है सब जगह पर लेकिन वो भेद नहीं कर सकती उसके कवच को, उसके अंदर वो टीबी का जर्म जो है वो जीते रहता है। तो हम उसको फिर अलग दवा देते हैं जो उसका सुरक्षा कवच छोड़ देगा, उसका कवच जो है ना मेम्ब्रेन तोड़ के अंदर दवा घुसेगा और अंदर के जीव को मार डालेगा, तब जाके टीबी ठीक हो जाएगा। इसको कहते हैं पेनेट्रेशन, क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, गहराई तक प्रवेश करना। जब तक हमारा भाव पवित्र नहीं होगा तब तक हमारा भजन जो हम कर रहे हैं वो गहराई में नहीं घुसेगा, ऊपर ऊपर तक तिलक लगाने तक ही रहेगा, सुंदर वस्त्र पहनने में ही रहेगा, वैष्णव वस्त्र लेकिन उसी में रहेगा, सब हम बड़े ढंग से और स्टाइल से करते हैं लेकिन हृदय में वो जाकर छूता नहीं है। अगर भगवान को प्रसन्न करना है तो हृदय को छूने वाली एक्टिविटी होनी चाहिए, जो भी आप कर रहे हो, पुकार रहे हो भगवान को तो पुकारना चाहिए, जब कर रहे हो तो पुकार के साथ जब करना चाहिए, संबोधन बुलाना, अगर भीड़ में किसी को बुलाना है तो आप विवेक धीरे से बोल सकते हो क्या? दूर है वो बहुत व्यक्ति, शोर है बीच में बहुत, तो आपको जोर से बुलाना पड़ेगा तब, ताकि वो मुड़ के देखे कि कौन बुला रहा है मुझे, तो उसका ध्यान आकर्षित करना है तो आपको जोर से पुकारना पड़ेगा और रियली उसको मिलना है आपको, तो आप कुछ भी करेंगे, धक्का मुक्की करेंगे, उसको मिलेंगे जाके और उसको कॉन्टेक्ट करेंगे उससे, तो जप करना भी संपर्क करना है, संबंध करना है भगवान से। इसलिए जप में हृदय होना चाहिए, भाव होना चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए। केवल 16 मारा फेरना नहीं है कि वो एक एक मणि नीचे करके 16 हो गया, आज का काम खत्म, अभी माला जो है वो माले पे फेंक देना है। कल सुबह तक कोई कांटेक्ट करने का जरूरत नहीं है, कल सुबह उठ के ढूंढेंगे किधर है माला और किधर है हमारी माला ही माला। हमारा ऐसा रहता है ना, एक बार वो 16 माला हो गया ना, रखो इसको भी, जाना है धंधा करने के लिए, अच्छा पैसा कमाना है, 2 घंटे का कितना कष्ट है, कितनी परेशानी है, 2 घंटे क्या गुरुजी भी क्या बोलते हैं, 10-15 मिनट बोलते तो कितना अच्छा था, 2 घंटे का नियम दिया है, ये भी कोई भजन की बात है। दिन रात भोग में लग रहता, बोलते नहीं कि इतना घंटा क्यों भोग कर रहे, लेकिन हमको उल्टा सोचना चाहिए, 24 घंटे भगवान ने दिया है, उन 2 ही घंटे जब करते हैं हम, ये गलत तरीका है सोचने का। भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कौन है, तो भगवान जवाब देते हैं, अर्जुन ने पूछा है कि आपके भक्त को कैसे पहचानेंगे हम, भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढव्रतः, जो दृढ़ व्रत से सतत मेरा कीर्तन करते रहता है ऑल द टाइम, जब देखो भगवान के विषय में बात करता है या तो उनके नाम का जप करता है, कभी भी मिलेंगे उनसे तो भगवान का विषय छोड़ के दुनियादारी का बात करेगा ही नहीं, वो भगवान ने पहचान लिया अपने भक्त का, जो भी बोलेगा वो भगवान के संबंध में ही बोलेगा, और आप अगर कुछ दूसरा बात करेंगे तो घुमा के आपको भगवान के विषय में लेके आएगा। वो कैसे होता है LIC का एजेंट, वो शादी में मिलेगा, हाँ बर्थडे में मिलेगा, या किसी एंगेजमेंट में मिलेगा, या किसी फंक्शन में मिलेगा, किसी एनुअल डे सेलिब्रेशन में मिलेगा, कहीं मिलेगा, अब मिलते ही पहले पॉलिसी निकालेगा, प्रभु जी ये नई पॉलिसी आई है ले सकते हैं हम, वो छोड़ेगा नहीं, आप चाहे उसको डाइवर्ट करें फिर भी घुमा फिरा के वापस पॉलिसी पे आएगा, वो फिक्स है उसका माइंड कि जहां भी जाएंगे वहां पॉलिसी का मेंबर बनाएंगे, सबको बेचेंगे। तो बीच में आया था ना वो एमवे मल्टी लेवल मार्केटिंग, अरे लोग इतने परेशान हो गए थे उससे, बाप रे, मंदिर में, मंदिर के बाहर, मंदिर के प्रवचन के अंदर, दर्शन में, यात्रा में, किधर जाएंगे तभी वो वही राइट लेग और लेफ्ट लेग उसी की बात करते थे हमेशा, बंद कर दिया हमने उसको, इतना रोग फैल गया था वो अंदर उसके, बैन कर दिया उसको, एमवे भी नहीं चाहिए, ओनली वन वे कृष्णाज वे, नो एमवे। तो लोग कितना फिक्स होते हैं, देखो जब भोग की बात आती है, स्वार्थ की बात आती है, कितना कमिटेड रहते हैं उसके लिए, दृढ़ व्रत है ना, एकदम दृढ़ व्रती रहते हैं वो। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त कौन है, सततम कीर्तयन्तो माम, सदैव मेरा ही चिंतन करता है, मेरे विषय में बोलता है, मेरा ही गुणगान करता है, मेरी सेवा में रहता है, वो मेरा भक्त है। तो अगर हमें भक्त बनना है तो 2 घंटे में परेशान होने की कोई बात नहीं है, प्रभुपाद जी कहते हैं मिनिमम 16 राउंड्स, उन्होंने कभी बताया नहीं कि मैक्सिमम 16 राउंड्स, आपको 16 माला के बाद में एक मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, ऐसे बोला नहीं है, हम बोले मिनिमम आपको 16 माला करनी है, उसके बाद जब भी समय मिले, जब भी यात्रा में हो, हाँ क्रिसमस की छुट्टी है, दिवाली की छुट्टी है, संडे की छुट्टी है, आपने CL लिया है तो उस दिन 25 वाला करो, एकादशी का दिन में 25 करो, और समय मिलेगा तो 50 करो, 50 माला, क्या प्रभु जी क्या ठीक से तुम्हें क्या कहा था आपने आज, 50 माला क्या बात है प्रभु जी, 8 घंटे लगते हैं उसके लिए। लेकिन जिसको कोई लड़की समझो, किसी लड़के के प्रेम में पड़ी है, उसका बोलेंगे देखो केवल 2 घंटे सोचना है उसके बारे में, उसके बाद में सोचना नहीं उसके बारे में, आपकी शादी हो रही है समझो भी, अवैवाहिक है, आपकी शादी हो रही है, आपको बताया जाएगा, पिताजी बोल रहे देखो शादी हो रही है, लेकिन दिन में 1 घंटा के ऊपर उसके बारे में सोचना नहीं आपको, ऐसा हो सकता है क्या? जो विषय आपको पसंद है, आपके इंटरेस्ट का विषय है और आप चाहते हैं उस विषय को, वो दिन रात सोचते हैं उसके बारे में, आप कोई आपको रोक नहीं सकता है आपके मन को, अब किताब खोलेंगे एग्जाम है आपकी किताब में भी वही दिखेगा आपको जिस पर प्रेम करते हैं, है ना, हम सब लोगों ने प्रेम किया है, हमको पता है एग्जाम में इधर उधर सब जगह वही दिखाई पड़ता है और कुछ मन में आता ही नहीं कुछ। तो अगर भगवान पे आपका प्रेम हो गया तो फिर आपको बोलना नहीं पड़ेगा कि 2 ही घंटा करो, वो ज्यादा मत करो, दिन रात करते रहेगा, ऐसी लागी लगन है ना, वो जब लगन लगती है ना फिर उसके बाद में फिर कुछ अच्छा लगता नहीं, वो स्थिति आनी चाहिए। तो एनीवे ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे उसको, मदन मुंजी से आप प्रार्थना करो कि हम लोग है ना वैसे हैंड पैक्ड, मतलब हैंड पैक्ड, हैंड पैक्ड मतलब हिंदी में क्या बोलते जो रुका खुला नहीं नहीं ठीक मतलब इतने चिपके हुए हम लोग भोग से, इतने चिपके हुए हैं कि उसके बिना कुछ नहीं कर सकते हम, वही चाहिए हमको। कोई नशा करने वाला व्यक्ति होता ना बार बार बोलता है मैं छोड़ दूंगा, मैं आज से छोड़ दिया, अभी छोड़ दिया, चलो दो मिनट के बाद वापस चालू करते हैं, छोड़ नहीं सकते। इतना मन तो करता है छोड़ना चाहिए लेकिन छोड़ नहीं सकता है वो। वैसे हम भौतिक दुनिया के आनंद से आदि हो गए हैं, भौतिक सुख से एकदम लिप्त हो गए, चाहते हुए भी छोड़ नहीं सकते। तो इनसे प्रार्थना करना है कि आप छुड़वा दो, आप ही छुड़वा सकते हो। मैंने हमारे कॉलेज में ना ऐसे ऐसे लोग देखे हैं आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे साथ पढ़ते थे वो। एक दारू का ग्लास में मैड्रिक्स की गोलियां, कॉम्पोज की गोलियां, चरस अफीम की गोलियां, ब्राउन शुगर ऐसा करके पीते थे। बाप रे, आई कैन नॉट इमेजिन। लेकिन मेरे साथ में थे वो, 8 साल सीनियर थे लेकिन हमारे बैच में भी आ गए, हमारे बाद में भी 4 साल रहे हो। बहुत लंबा कार्यक्रम था उनका MBBS करने का। ऐसे लोग भी, वो व्यक्ति भी भगवान का नाम लेने के बाद में ये सब कुछ छोड़ पाया। बोलो, आज केवल चाय पीता है वो, बस वही छोड़ करता है, बाकी सब कुछ छोड़ दिया। इतना हेवी नशा करने वाला व्यक्ति किसी प्रयास से, किसी मेडिकल ट्रीटमेंट से, डी एडिक्शन प्रोग्राम से वो छोड़ नहीं सका उसको। लेकिन जब भगवान नाम, राम नाम लिया उसने तो वो छोड़ दिया, उसने छोड़ पाया। तो केवल भगवान नाम में वो शक्ति है कि जड़ से आपकी जो आपका रोग जो है वो नष्ट कर सकता है। और कितने ऐसे लोग हैं जो सिगरेट बीड़ी पीते हैं, वो छोड़ नहीं पाते उसको। एक बार दारू छोड़ सकते हैं, एक बार ब्राउन शुगर छोड़ सकते हैं, लेकिन सिगरेट बीड़ी जो है ना वो, उसके बाद में चाय बहुत ही मुश्किल छोड़ना। एक तो रोज चाहिए ही चाहिए। वो भी छोड़ने की शक्ति जो है केवल भगवान के नाम के जप से आती है। भगवान का नाम जो है ना वो अगर आप लेते हो दिल से तो जड़ से आपकी बीमारी खत्म करेगा वो। जड़ से क्यों, ऊपर से काटेंगे तो फिर जड़ है तो फिर वापस आता है ना पेड़ ऊपर। आपको बीमारी खत्म करनी है, डॉक्टर क्या बोलेगा, ये जड़ से निकालना है आपको। 15 डेज वो प्रिवेंटिव कोर्स भी लेना है, वो मलेरिया का एक कोर्स होता है ट्रीटमेंट। उसके बाद 15 दिन का एक कोर्स होता है ट्वाइस अ डे 7.5 मिलीग्राम, ताकि वो जड़ से रोग नष्ट हो जाए। टीबी का भी ऐसा होता है, प्रोफिलैक्सिस बोलते हैं उसको। तो जड़ से कोई बीमारी नष्ट करनी है तो भगवान का नाम सबसे ऊंची औषधि है। एनेची औषधि मांगी नाशो बारो लागी, हरि नाम महामंत्र लाओ तुम्हें मांगी। इससे बड़ा कोई दवा नहीं है। तो वो दवा जो है ना वो यहां से मांगो आप, क्योंकि हर दवा हर जगह नहीं मिलती ना, विद प्रिस्क्रिप्शन ही मिलती है। कुछ दवाएं ऐसी होती है ना वो शेड्यूल एक्स ड्रग होते हैं, वो प्रिस्क्रिप्शन के डॉक्टर के साइन के बिना, उसके MMC नंबर के बिना नहीं मिल सकते हैं। तो दवा तो मालूम है आपको लेकिन देगा नहीं कोई आपको उसको, प्रिस्क्रिप्शन होगा तो मिलेगा। तो यहाँ मदन मोहन जी की कृपा से आपको महामंत्र मिलेगा, यहाँ से आप मंत्र लेंगे, यहाँ से आप मांगेंगे और यहाँ से पुकारेंगे, तो वो बोनाफाइड तरीका है और उससे आपका हृदय का रोग जो है ना भव रोग वो जड़ से नष्ट हो जाएगा। और फिर यहां से संबंध आरंभ हुआ, जैसे मैंने कल भी बताया आपको संबंध का मतलब क्या, संबंध हो गया मतलब वहां से आगे कुछ नहीं हुआ, ऐसे नहीं होता है, उसके बाद में कुछ ना कुछ होते रहता है एक्टिविटी। तो वो है भगवान के नाम का जप, फिर वो खा रहे हैं तो भोग लगा के प्रसाद खा रहे हैं, फिर वो भगवान के भक्तों का संग कर रहे हैं, किसी फिल्म स्टार का या फिल्मी विषय में या धन वाले विषय में पैसे कमाने वाले विषय में नहीं संग कर रहे हैं, भक्तों का संग कर रहे हैं। अभी फालतू किताब नहीं पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, भगवान की किताब पढ़ रहे हैं। कहीं यहाँ वहाँ पिकनिक बनाने के लिए घूमने जा रहे हैं, हिल स्टेशन में नहीं जा रहे हैं, जगह जयपुर में आ रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, मायापुर जा रहे हैं, जगन्नाथपुरी जा रहे हैं। बाहर जाने की प्रवृत्ति है, घूमने की प्रवृत्ति है, लेकिन वो भगवान की जगह जा रहे हैं। ऐसे कहीं ऐसे ही घूमने को नहीं जाएंगे इधर उधर। ये संबंध के आगे की एक्टिविटी है, लेकिन संबंध होना जरूरी है। इसलिए हम यहाँ पर भिक्षा मांगने आए हैं कि भगवान दुनिया का संबंध तोड़कर हम आपसे संबंध बनाना चाहते हैं, प्रस्थापित करना चाहते हैं। तो ये जो नाम है ना इनका मदन मोहन, दो चीजें, एक मदन है और एक मोहन है। तो मदन कौन है, वो कामदेव कहते हैं, क्यूपिड। क्यूपिड परदेश में उनको पूजा करते हैं, उनकी, कामदेव की। पीपल वर्शिप क्यूपिड इन फॉरेन कंट्रीज. और मदन का काम क्या है? मदन मतलब कामदेव, और उनकी पत्नी जो है रति देवी. हाँ, ये सभी देवताओं से सर्वश्रेष्ठ सुंदर देवताएं हैं दोनों. इंद्र भी इनके सामने कुछ नहीं, सुंदरता के सामने. इनका शारीरिक सौंदर्य जो है ना पति पत्नी का, तो एकदम अनपैरेलल्ड है. और क्या करते हैं ये दोनों? इनके पास ना फूलों के बाण होते हैं, आयन के बाण नहीं होते, फूल के बाण होते हैं. और फूल का ही धनुष होता है, पुष्प धनुष और पुष्प बाण. और ये क्या करते हैं? हम सबको बाण मार देते हैं. और जैसे ही बाण हमको लगता है तो हम दुनियादारी में लिप्त हो जाते हैं, दुनियादारी के आकर्षण में फंस जाते हैं. हमारे सबके हृदय में अभी भी ये बाण घुसा हुआ है, हम इस बाण से विद्ध हैं, विद्ध पुष्प बाण विद्ध है सब लोग, अफेक्टेड परमानेंटली. तो ये है मदन. हाँ, वो सभी देवताओं के लुक में जाते हैं, सब लोगों को फंसा देते हैं. इनका देव इंद्र को भी उसमें फंसा देते हैं, इंद्र को भी इनका बाण लगा हुआ है, सबको लगा हुआ है, कोई छूटता नहीं इनके बाण से. जहां जहां भगवान को छोड़कर सुख प्राप्त करने की इच्छा है वहां इनका बाण फिट हो जाता है बिल्कुल ही, वही जगह है बेस्ट टारगेट ना, सॉफ्ट टारगेट. द बेस्ट टारगेट इज जहां पर भगवान को छोड़कर भोग लेने की इच्छा है, वहां पर ही मदन का बाण जाके आपको घुस जाएगा. तो इनका नाम क्या है? मदन मोहन. कई कहानियां मैंने लिखी रखी है आपको बताने के लिए आपको. तो मदन मोहन का नाम ऐसा है कि जो मदन दुनिया को मोह लेता है, दुनिया के हर जीव को, बड़े बड़े से देवताओं को लेकर प्राणी कीटक, हाँ, अमीबा, पैरामेशियम, जर्म्स, बैक्टीरिया, वायरसेस, यहाँ इनको भी सेक्स डिजायर है. बाय द वे, ऐसा नहीं है कि हमारे लिए, वो भी पैदा करते हैं, हजारों में पैदा करते हैं, कुछ कुछ मिनट के अंदर उनके बैक्टीरिया ऐसे पैदा होते हैं कि आपका अभी शरीर खा हा हो रहा था, बाद में कफ बन जाता है तुरंत एक घंटे के अंदर. मल्टीप्लाई होते हैं. मल्टीप्लाई कैसे होते हैं? बिना सेक्स के मल्टीप्लाई नहीं होते. तो सेक्स डिजायर उधर भी है, कीटाणुओं में भी है, और जानवर में भी है, देवता में भी है, मनुष्य के अंदर भी है. तो ये जो काम वासना है इनको सब में लिप्त करना इनका काम है. तो ये मदन मोहन यानी कि ऐसे सबको मोहने वाले मदन को भी जो मोह लेते हैं वो मदन मोहन है. से कहानी है, एक बार ये कामदेव जो है ना वो शिवजी के पास आए और शिवजी को बाण मारना चाहा उन्होंने, तो शिवजी ने तीसरी आंख खोल दिया और जलाकर भस्म कर दिया उसको. शिवजी को नहीं छू सका, सबको छू सकता है लेकिन शिवजी का आपको कोई छू नहीं सकता है. वो तो परे हैं, त्रिगुणातीत है वो शिवजी महाराज. फिर एक बार वृंदावन में आए और देखा कि वृंदावन में एक मदन टेर नाम की जगह है, हमारे हॉस्पिस के पास में है बिल्कुल, मदन टेर नाम है उसका. वहां पर एक नीला सुंदर पुरुष और अनेक सुंदर गोपांगनाएं, अनेक एक ही पुरुष है, अनेक स्त्रियां हैं वहां पर, सुंदर सुंदर, सब उनको रिझाने का कोशिश कर रही है. हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. तो मदन आते हैं वहां पर अपने पत्नी को लेकर. उसे ये बड़ी बढ़िया जगह है, यहाँ पर वातावरण बहुत कामुक है, स्त्री पुरुष का संबंध यहाँ पर है, तो यहाँ पर बाण मारने की अच्छी जगह है. तो बाण ऐसा चढ़ाते हैं पुष्प धनुष पर और खींचते हैं, और श्री कृष्ण के मुख पर देखकर उसको अभी छोड़ने वाले हैं, लेकिन जब अपना लक्ष्य श्री कृष्ण की ओर करते हैं तो आप देखिए, मैं आपको बाण मार रहा था, आपको देखूंगा ना, मैं आपको देख के निशाना बनाऊंगा. तो निशाना बनाकर भगवान का मुख देखते हैं ना, तो इतना सौंदर्य भगवान का जो है, इतना सौंदर्य, अद्वितीय सौंदर्य है, पारलौकिक सौंदर्य है, अचिंत्य सौंदर्य है, जिसका कल्पना नहीं कर सकते, अकल्पनीय है. इतना सुंदर सौंदर्य भरा चेहरा देखते ना, तो उसके हाथ से पुष्प बाण पुष्प धनुष फिसल जाता है, और कुछ देर बाद उनको देखते देखते ही खुद भी पिघल जाता है, उसकी पत्नी भी पिघल जाती है, कंप्लीटली मेल्टेड, नष्ट हो जाता है एक तरह से. इतना सौंदर्य भगवान का है, कामदेव का सौंदर्य भी तुच्छ है उनके सामने. तो मदन टेर जगह है, हमारे हॉस्पिस के बिल्कुल बाजू में, परिक्रमा रास्ते पर वृंदावन में है. तो भगवान ने केवल अपने होने से, केवल अस्तित्व से कामदेव जैसे कुछ तो बाण मारने वाले को उधर परास्त कर दिया, कुछ किया नहीं भगवान ने, बहुत अपने
स्टैंडिंग देयर विद गोपीज। सृष्टि का निर्माण हुआ ना तो भगवान ने सभी लोगों को अपना अपना रोल ले दिया है ना। जब पृथ्वी रोते रोते गई थी ब्रह्मा जी को लेकर, तो भगवान ने बोला डोंट वरी मैं आऊंगा और कंस का वध करूंगा, और सब देवताओं को आदेश दिया आप सब लोगों को जाना है, कुछ लोग यदु वंश में जाइए, कुछ लोग कुरु वंश में जाइए, कुछ लोग वृष्णि वंश में जाइए, कुछ लोग वृंदावन में जाइए, अपना अपना पोजिशन ले लीजिए, मैं आ रहा हूं, मैं जन्म लूंगा उसके बाद। तो सब लोग आए, अष्टवसु में से एक वसु भीष्मदेव बने और शिवजी द्रोणाचार्य बने और अश्वत्थामा और ऐसे बहुत सारे लोगों का लंबा लिस्ट है, गर्ग संहिता में दिया है। तो कामदेव को जब सेवा देने का समय आया तो कामदेव बोला नहीं 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 मैं ना मैं अपनी मर्जी से सेवा लूंगा मेरे, उसके मन में कुछ अलग प्लान था। वो भगवान तो सब जानते सबके मन की बात, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जब तुमको जब जो करना है तुम करो, कोई बात नहीं, आना जरूर लेकिन ना बिल्कुल मैं जा रहा हूँ। तो फिर भगवान को बोले ऐसा करता हूं मैं, मुझे एक जगह दे दो यहां पर, मैं अपना एक सेटिंग बनाऊंगा, क्योंकि उनको ना कैसे भी करके भगवान पर बाण मारना था, इसलिए उसने कुछ ज्यादा सेवा लिया नहीं, मतलब मैं जाकर उनको ही बाण मारूंगा, उनको ही युद्ध करूंगा। तो एक जगह है रणवारी नाम की, वो छाता के पास में है वृंदावन में, बहुत सुंदर जगह है। वहां जाकर उन्होंने क्या किया, अपने पत्नी को भेज दिया रति को, बोला तुम ऐसे एक सरोवर बनाना, ऐसा जलाशय बनाना इतना सुंदर हो, अच्छे अच्छे फूल हो उसके अंदर, खुशबूदार वातावरण हो, ऐसा मिस्टी यानी बाष्प सब जगह घुमा हो, बादल हो, मंद मंद हवा चलती हो, सब जगह पुकेसर हो, अच्छी म्यूजिक बजती हो जो कान को प्रसन्न करे, ऐसा वातावरण निर्माण करो जल के साथ कि कोई भी आएगा ना कामुक हो जाएगा, इमीडिएटली बिकम लस्सी। तो उनका तो स्पेशलिटी है ना वो, तो रति देवी गई, उन्होंने वहां पर एक बहुत सुंदर कुंड बनाया, उसके आसपास ऐसा सीनरी बनाया कि जो भी जाएगा वो पागल हो जाएगा वहां पर देख के, मन के अंदर जितनी वासना दबी हुई वो वासना भी जागृत हो जाएगी ऐसे। और उसके बाद फिर कामदेव भी वहां पर आ गए और इंतजार कर रहे हैं। फिर भगवान वहां पर गोपियों को लेके आते हैं, पहले गोपियां आती हैं, तो गोपियां जैसे आती ना, गोपियां तो भगवान के परम भक्त हैं, फिर भी वातावरण का परिणाम उन पर भी होने लगता है, वो धीरे धीरे उस वातावरण के वश में आने लगते हैं और उनका मन में अलग अलग इच्छाएं पैदा होती हैं। तो भगवान आते वहां से, देखते गोपियां सब कामदेव के वातावरण के परिणाम में लिप्त हो रही हैं। तो भगवान ने क्या किया, हर एक गोपी के सामने एक एक अपना रूप खड़ा कर दिया, रास में किया था ना वैसे, हर एक गोपी के सामने एक एक कृष्ण खड़े हो गए, और तुरंत सारी गोपियां तत्क्षण कामदेव के वातावरण के प्रभाव से मुक्त हो गई और कृष्ण से लिप्त हो गई। तो भगवान ने क्या किया, कामदेव के सारे परिणाम को, सारे इन्फ्लुएंस को, प्रभाव को केवल अपने अस्तित्व से नष्ट कर दिया, और कामदेव वहां पर आके भगवान के चरणों में शरणागत हो गया कि यस सर आई एम सॉरी, मेरे मन में कुछ दूसरा प्लान था लेकिन मैं समझ गया कि आप हमारे सब प्रभाव के परे हो। तो वो जगह रणवारी है, एक तरह से भगवान ने कामदेव से भी युद्ध किया ना, इस तरह से कामदेव ने अपना जाल फेंका तो भगवान ने उस जाल को नलीफाई कर दिया, वो रणवारी है ना। और एक कहानी है, हाँ, एक राक्षस था सहस्त्र कवच, उसने तपस्या करके 1000 कवच अपने शरीर पे चढ़ाए थे उसने, और कवच तो प्राप्त किए वरदान के रूप में, बाद में और एक वरदान मांगा, बोलते एक मेरा कवच तोड़ने के लिए किसी भी एक व्यक्ति को 1000 वर्ष तप करेगा ना वो, तब जाके वो मेरे एक कवच तोड़ पाएगा, ऐसा वरदान दो मुझे, तो भी वरदान दिया उसको। फिर उसका एक ही काम था, कोई तपस्या में बैठ गया उसको जाके मारता था, वो राक्षस था ना, खुद बलवान था, कोई भी तपस्या करने को बैठ गया किसी भी कारण से जाके उसको मारता था वो, ताकि उसके 1000 के 1 साल भी पुराना होने चाहिए, तभी इसको मारना बहुत मुश्किल हो गया। और वो ऋषि मुनि ही तपस्या करते हैं, तो ऋषि मुनि सबका वध होने लगा, सब भाग भाग के भगवान के पास गए, भगवान क्या करे अभी तपस्या करने का चांस ही नहीं है, ये आके तुरंत मार देता है। तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं हम इसका इलाज करेंगे। कैसे कहते हैं ना, भगवान जब उनको तप करने की इच्छा होती ना तो वो बद्रिकाश्रम जाते हैं,
राधे राधे,
राधे राधे, जय महाराज जी, जय श्री राधे,
मदन मोहन जी की
प्रसाद, जय हो मदन मोहन महाराज की, चलो आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, जय हो श्री राधे, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जब भगवान को तपस्या करने की इच्छा होती है तो वो नर नारायण ऋषि बन जाते हैं, जब भगवान को भोजन करने की इच्छा होती है तो वो जगन्नाथपुरी जाते हैं, जब सोने की इच्छा होती है तो श्रीरंगम जाते हैं, जब राजपाट राजनीति करने की इच्छा होती है द्वारका चले जाते हैं, जब खेलने की इच्छा होती है तो कहाँ जाते हैं, श्री वृंदावन धाम में जाते हैं। सब कुछ छोड़कर खेलना मूड आता है ना, खेलने का है ना गोरा, कहाँ जाते हैं, श्री वृंदावन धाम में जाते हैं। तो वो तपस्या करने के लिए फिर इनके ऋषियों को संभालने के लिए ऋषि बने, नर नारायण ऋषि, नर जो है अर्जुन है, नारायण भगवान है स्वयं। और क्या प्लानिंग था उनका, बद्रीनाथ में एक वरदान है कि वहां पर एक साल कोई तप करेगा ना 1000 साल तप करने का लाभ मिलेगा, तो ये उधर ही गए। और कैसा था, एक जब तपस्या कर रहा है तो दूसरा उनके साथ युद्ध कर रहा है, तो एक साल युद्ध करते रहेगा और एक साल के एंड में एक कवच तोड़ेगा, तब तक इसकी एक साल की तपस्या पूरी हो जाएगी, तो वो तपस्या करने बैठेगा, दूसरा युद्ध करने जाएगा, तो उसको बिजी रखा उन्होंने। और ऐसे करके नर नारायण ऋषि ने 1000 कवच उसके तोड़ दिए, नहीं 999 कवच तोड़ दिए उसके। तो एक कवच जब बचा तो भाग के सूर्य के पास गया, बचाओ मुझे बचाओ, तो सूर्यदेव ने शरण दिया उसको, तो वो पीछे आ रहे नारायण ऋषि आ रहे थे उसको मारने के लिए, लेकिन सूर्यदेव ने नारायण भगवान को विनती किया कि भगवान इसको माफ कर दो, अभी मैं इसको संभालूंगा कि और पाप नहीं करेगा, आई विल टेक केयर ऑफ हिम। तो वो जाके कर्ण बना अगले जन्म में, इस जन्म से उसको कवच कुंडल थे, और लोग इतनी सांत्वना देते, बेचारा कर्ण, अरे बेचारा कितना अन्याय हुआ, अरे तो राक्षस था पुराने जन्म का, बहुत पापी राक्षस था वो, तो आवाज कम करो, बहुत पापी राक्षस था वो, इसकी वजह से उसको इतने दुख भोगने पड़े। और हम लोग बोलते हैं भगवान ने अन्याय किया, अर्जुन ने अन्याय किया, गुरु ने अन्याय किया, सब ने अन्याय किया, बेचारा कितना अच्छा आदमी था। लेकिन इतिहास कोई जानता नहीं है, हाँ बस सब लोगों को आधा आधा नॉलेज मालूम है, पूरा नॉलेज पता नहीं है। तो इस प्रकार से एनीवे वो कथा अलग है। तो नर नारायण ऋषि जब भी तपस्या करने बैठे ना, तुरंत कामदेव वहां पे आ गए, इनका काम ही यही है, इंद्र ने भेजा उनको। इंद्र जो है ना वो भगवान का भक्त तो जरूर है, लेकिन गुरु महाराज बताते हैं वो काम मिश्रित भक्त है, कर्म मिश्रित भक्त है, मतलब उनको भोग भी चाहिए और भक्ति भी है, भोग भी है, दोनों साथ में चलता है उनका, इसलिए बहुत बार समस्या होती है, कितना दुख होगा उन्होंने इसकी वजह से, कितनी उनको मन में इनसिक्योरिटी है, कोई तपस्या करने बैठ गया तो ये टेंशन में आ जाते हैं, तपस्या सक्सेसफुल हो गया तो मेरा पद ले लेगा, मुझे पद खाली करना पड़ेगा, तो कोई तपस्या करने बैठेगा तुरंत भेजता है किसी को, अप्सराओं को भेजता है, मेनका को भेजता है, किसी किसी को भेजते रहता है डिस्टर्ब करने के लिए, विश्वामित्र को डिस्टर्ब करने के लिए मेनका को भेजा था, और जहां जहां ऋषि तपस्या किया वहां किसी किसी को भेज के डिस्टर्ब करने का प्रयास करते हैं। तो देवता बनने का प्रयास मत करना, देवता बनने के बाद भी इनसिक्योरिटी बनी रहती है, प्लीज अंडरस्टैंड दिस। तो कामदेव को भेज दिया, तो कामदेव को देखकर नारायण ऋषि हंसने लगे, कामदेव ने ऐसा अप्सराओं को लेके गए थे बहुत सारे, सब अप्सराएं डांस कर रही है, अरे एक एक अप्सरा को देखेंगे तो हम पागल हो जाएंगे, इतना सौंदर्य है उनके पास, हमारे शरीर से बदबू निकलती है पसीने की, उनके शरीर से खुशबू निकलती है, एक एक कोस तक हर एक अप्सरा की अलग खुशबू रहती है, ऐसे अनंत अप्सराओं को लेकर आए, वो सब डांस कर रहे हैं, श्रृंगार किए हुए हैं, फूलों की माला अलंकार पहने हुए हैं, वस्त्र पहने हुए हैं, और ऐसे उनके सुनहरे बाल और उनका सौंदर्य, उनकी कांति, उसे देखकर कोई पागल हो जाएगा, ऐसे सैकड़ों अप्सराएं लेकर कामदेव आते हैं। तो नारायण ऋषि उनको देखकर हंसते हैं और अपने शरीर से ऐसे अप्सराओं का निर्माण करते हैं कि सारी अप्सराएं डांस करना बंद कर देती, उनका सौंदर्य देखकर ऐसे अवाक हो जाते हैं उनको देखकर, अरे ये भी कोई सौंदर्य है, हम सोच रहे थे हमारे आगे कोई सौंदर्य है ही नहीं, और आज देख रहे हैं कि ऐसे अनंत देवियां पैदा हो रही है इनके शरीर से, ऋषि के शरीर से, और जोर से हंसने लगे वो, अरे तुम मुझे बाण मारने आए हो, क्या समझते हो अपने आप को। तो फिर वो चरण आएंगे उनके चरणों में गिर के, माफ करना हमको इंद्र ने भेजा था, हम तो ड्यूटी पर हैं। बोले काम एक काम करो, इनमें से अब कोई अप्सरा अच्छे लगती है ना ले जाओ उसके लिए। तो उर्वशी को दे दिया उन्होंने, उर्वशी उनके शरीर से पैदा हो गई। बोले ये काम करो, ये उर्वशी को बोलो ले जाओ और जो करना है तुम्हारे लिए है ये। तो ऐसे परास्त होकर कामदेव लौट गए वहां से। ऐसे कई कहानी है, मैं को तीन चार कहानी बताई आपको। पर्पस क्या है उसका, कि भगवान के सामने कामदेव का प्रभाव टिकता नहीं है। तो हमारे ऊपर कामदेव का प्रभाव है, सब मदन के बाणों से लिप्त है, विद्ध है, हम लोग मुक्त होना है वो से। तो क्या करना पड़ेगा, इनके मत सर्वस्व पदाम बोझाओ, इनके चरणों का आश्रय लेंगे तो बाण जो है ना वो अपने आप निकल जाएगा। हमारे ने एक फ्लैट लिया था हमारे हॉस्पिटल के लिए पहले, तो जब सेकंड फ्लैट लेने के लिए गए तो वो उसी मालिक का था, बाजू में डीलिंग करने बाहर निकले गेट पर, तो उनका जो कुत्ते का पिल्ला था ना वो भी साथ साथ बाहर आ गया गेट तक, सोसाइटी के गेट तक। वो भी मालिक भी आए, हम भी आए अविदा करने के लिए। उतने में जब वो रोड पे आया ना सोसाइटी के, पिल्ला और हम लोग सब लोग, तो तीन चार बड़े बड़े कुत्ते जो है ना वो भौंकने लगे ऐसे जोरदार, उस कुत्ते को देखकर, पिल्ले को देखकर। और तो पिल्ला ऐसा बाजू में था, तो क्या किया पिल्ले ने, पिल्ला तुरंत ना अपने मालिक के दो पैर के बीच में आया, ऐसे दो पैर के बीच में आया, ऐसा जोर जोर से भौंकने लगा उन तीन कुत्तों के ऊपर कि वो तीन कुत्ते भाग गए वहां से। क्या किया उसने, एक्चुअली अकेला नहीं भोगा, पहले अपने मालिक जो तीन कुत्तों से ज्यादा बलवान है उसके चरणों का आश्रय लिया और उसके बीच में से भोगा उसके ऊपर पूरे इत्मीनान के साथ, पूरे आत्मविश्वास के साथ कि यहां पर मुझे कोई छू नहीं सकता है, वो यहां पर नहीं आ सकते मुझे मारने के लिए। ऐसा आश्रय लिया, ऐसा स्थान ग्रहण कर लिया कि वो कुत्ते वहां नहीं पहुंच सकते, और वहां खड़े होकर ऐसा भोगा उनके ऊपर कि वो भी भाग गए। मुझे ये कहानी, मैं उसका विटनेस हूं ना, मैं तब से मुझे, मैंने कई प्रवचन में कहानी बताई है, मुझे बड़ी अच्छी लगती है कहानी, इतना मर्म है उस कहानी के अंदर। एक कुत्ते के पिल्ले ने कितनी बड़ी शिक्षा दी है। आप भी कमजोर होंगे ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे मजबूत आदमी का सहारा लो और सबसे मजबूत आदमी पर चिल्ला सकते हो, फिर आप आराम से उसको डिफीट कर सकते हो। लेकिन बलवान आदमी का पहले सहारा लो, फिर दूसरे बलवान के ऊपर आक्रमण करने का प्रयास करो। ऐसे खुद ही जाकर आक्रमण करेंगे तो नाम शेष हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। लेकिन जब सबसे बलवान व्यक्ति का सहारा लेंगे ना, तो और कोई बलवान चीज आपके लिए परिणाम नहीं कर सकती है। इसलिए मदन मोहन है, अगर मदन के बाणों के प्रभाव से मुक्त होना है तो मदन मोहन जी का सहारा लेना पड़ेगा। और इनका सहारा अगर आप लेते हैं तो आपको कभी भी मदन से का परिणाम नहीं होगा। आप ऐसा ही बोलते ना, अभी समझो हम लोग डॉक्टर हैं, हम लोग समझो पता चला कि टाइफाइड के साथ चल रही है सब जगह पर और हमको उसी एरिया में काम करना है, रिलीफ वर्क करना है, तो क्या करते हैं आप लोग डॉक्टर साहब, क्या करते हैं? प्रोफिलैक्टिक मतलब क्या, प्रिवेंटिव, वैक्सीन लेते हैं ना, वैक्सीन। तो वैक्सीन लेके आप जाएंगे उस एरिया में तो आप खाएंगे पिएंगे किधर भी तो आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जब तक वैक्सीन का टाइम पीरियड है तब तक आपको टाइफाइड नहीं हो सकता है, वैक्सीन खत्म हो गया टाइम उसका, बाद में फिर पानी पियोगे जाके तो टाइफाइड होगा। तो वैक्सीन क्या काम करता है, रोग वाले स्थिति में भी आपको रोग से मुक्त रखता है, इसको वैक्सीन कहते हैं। तो ये वैक्सीन जो है ना ये परमानेंट लेना चाहिए हमको। और टाइफाइड वाला तो कुछ समय के लिए काम करता है, टेटनेस भी कुछ 5 साल का काम करता है, बाद में दोबारा लेना पड़ता है। हमारा हरिनाम जो है ना वो एक ही बार लेते हैं, जीवन में स्वीकार करते हैं और जीवन भर जपते हैं उसको। कभी भी कामदेव आपको स्पर्श नहीं करेगा, कभी आपको कोई कष्ट नहीं होगा। तो परमानेंट वैक्सीनेशन अगेंस्ट माया, अगेंस्ट भवरोग, भवरोग के खिलाफ जो है परमानेंट वैक्सीन लेते हैं हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये बड़ा अद्भुत स्थान है, यहाँ पर पतित से पतित जीव भी तर जाते हैं। और एक उसके आगे के रहस्य की बात है, मदन मोहन जी जो है ना ये बहुत जल्दी वश में नहीं आते। कृष्ण है ना वो इज अ वेरी श्रूड पर्सनैलिटी, वो आसानी से कभी अपने आप को किसी को देते नहीं। शुद्ध भक्ति जो करता है ना, निरपेक्ष भक्ति, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम आनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति रोचते। ऐसे व्यक्ति को ही वो अपने आप को देता है। मतलब क्या? अन्य अभिलाषिता शून्यम, उनके अलावा कोई अभिलाषा जिसके मन में है उसको नहीं प्राप्त करते हो अपने आप को। अन्य अभिलाषिता शून्यम, जो जिसकी अन्य अभिलाषिता शून्य हो गई है और ज्ञान और कर्म के प्रभाव से भी मुक्त है, वो कर्मकांडी भी नहीं है, फल की इच्छा करने वाला भी नहीं है और ज्ञान के प्रभाव में विरक्त होकर मुक्ति करने की भी उसकी इच्छा नहीं है। ज्ञान से क्या होता है, पता चलता है कि सब मिथ्या है, इसे मुक्त होना है अपने को, तो मुक्ति की भी इच्छा रखते हो। ज्ञानी व्यक्ति सबसे विरक्त है लेकिन मुक्ति चाहिए उसको। और कर्म का कांडी व्यक्ति क्या करता है, कर्म करता ही है फल की प्राप्ति के लिए। तो ज्ञान कर्मादि अनावृतम, मतलब ज्ञान के प्रभाव से मुक्ति का लोभ भी नहीं है और कर्म के प्रभाव से फल का भी लोभ नहीं है, अनावृत हो गया वो, आवृत हो नहीं मुक्त हो गया वो। इतना ही काफी नहीं है, आगे क्या बताया मैंने, अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम। कृष्ण अनुशीलन का मतलब है कृष्ण की सेवा करना, कृष्ण को प्रसन्न करने का कार्य करना, और अनुकूल्य मतलब फेवरेबली। कंस ने भगवान का ध्यान बहुत किया था लेकिन कैसे किया था, अनफेवरेबली, हाँ प्रतिकूल तरीके से भगवान का ध्यान किया था उसने, शत्रु के रूप में ध्यान किया था, दिन रात ध्यान किया था लेकिन अनुकूल नहीं था वो। तो जो अनुकूल तरीके से भगवान को रिझाने का प्रयास करता है उसी को वो भगवान प्राप्त हो जाते हैं। ये रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में श्लोक दिया है, भक्ति की व्याख्या किया, भक्ति क्या होती है, और ये भक्ति ऐसी जो करता है वो तत्क्षण दुखों से मुक्त हो जाता है, तत्क्षण उसमें जीवन में शुभ कार्य होने लगते हैं, तत्क्षण आनंद का अनुभव होता है और आखिर में सर्वोच्च लाभ जो है वो श्री कृष्ण आकर्षणी, वो श्री कृष्ण को आकर्षित कर लेती है। बाकी दुनिया में श्री कृष्ण को आकर्षित करने वाली कोई वस्तु नहीं है जो हम उसको देखकर प्रभावित कर सकते हैं। इज नथिंग विच कैन इम्प्रेस कृष्णा, अपने पास ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो भगवान को इम्प्रेस कर सकती है, लेकिन भक्ति ऐसी एक वस्तु है वो भगवान को इम्प्रेस कर सकती है, उनको आकर्षित कर सकती है। तो हम लोग एक थोड़ा सा शॉर्टकट ढूंढते हैं उसके लिए, हमारे पास तो इतना तो पावर है नहीं उनको आकर्षित करने का, तो हम लोग क्या करते हैं, राधा रानी के पास जाते हैं और राधा रानी को बोलते हैं, राधा रानी कृपा करो, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, बेसहारों का सहारा तेरे बरसाने में है। वो बहुत भोली भाली है और कृष्ण जो है ना वो उनके अधीन रहते हैं क्योंकि वो शुद्ध भक्ति की मूर्ति है, मूर्तिमान शुद्ध भक्ति जो है वो राधा रानी है स्वयं। जैसे मैंने कल बताया ना, भगवान ऐसे भक्तों के वश में रहते हैं तो हमेशा राधा रानी के वश में रहते हैं। जिनको प्राप्त करने के लिए ध्यानी तपी, हाँ तपस्या करने वाले ज्ञानी कर्मी अनंत जन्मों तक तपस्या करते रहते लेकिन उनको भगवान के नाखून से निकलने वाले अनंत किरणों में से एक किरण भी नजर नहीं आता है, ऐसे भगवान हैं वो। भगवान वैकुंठ छोड़ के इनके घर का माखन चुराने के लिए चोर बन जाते हैं, इतना प्रभाव है राधा रानी का। तो जो राधा रानी बहुत भोली है, इतनी कठिन नहीं है प्राप्त करने के लिए, उनकी याचना करेंगे आप तो वो तुरंत आपको स्वीकार करेंगी। उनकी सखियां भी ऐसे ही है, ललिता विशाखा, उनसे भी अधिक कोमल है वो, कोई सिंसियरली पुकारेगा तो तुरंत उसको अपना बना लेती है। फिर ये राधा रानी को हमको अर्पण करती है या हम डायरेक्ट राधा रानी को अप्रोच करते हैं तो राधा रानी फिर बोलते हैं, कन्हैया ये देखो कितना अच्छा भक्त है, इस पर कृपा करो। तो जब राधा रानी अगर किसी को रिकमेंड करती है तो फिर वो उसको मना नहीं कर सकते, डाल नहीं सकते। समझा, आपको कोई प्रधानमंत्री से कुछ काम है, अभी तो प्रधानमंत्री अविवाहित है लेकिन बाकी प्रधानमंत्री विवाहित थे, समझो आपको उनकी वाइफ की पहचान है तो आपने उनसे बोला जरा हमारा काम करने को बोल दो, तो फिर वो पनीर का सब्जी उनको परस रही है, आप बोल रही है कि ऐसा है मेरा एक फ्रेंड है उसका एक काम है, थोड़ा पनीर ले लो और खा लो, ये मेरा फ्रेंड का काम भी कर लो, तो तुरंत वो काम हो जाता है, डाइनिंग टेबल पे अपना काम हो जाता है ना, कितना आसान तरीका है। उसको ऑफिस में जब ऑफिशियली कितनी बार एप्लीकेशन दिया तो उसको रिजेक्ट कर चुके हैं, लेकिन जब इस रूट से आता है एप्लीकेशन तो साइन करने की भी जरूरत नहीं, पनीर से ही काम हो जाता है। तो वैसा ही है ये, वो आप कितना पुकारेंगे तो नहीं सुनेंगे शायद, लेकिन राधा रानी अगर बोलेगी तुरंत सुनेंगे। एक मोर था, वो कृष्ण को पुकारने के लिए नंदगांव गया, बहुत कृष्ण को पुकारा, बहुत नामों से पुकारा, गोविंद गोपाल मदन क्या क्या पुकारा उसको, तो कोई जवाब नहीं मिला। बड़ा दुखी हो गया, रोते रोते बरसाने आया, किसी ने कहा कि तुम बरसाने जाओ और राधा रानी को पुकारो, शायद वो कुछ करेगी आपके लिए। तो बरसाने आया और राधा रानी को तुरंत राधा रानी भाग के आई और तुरंत मोर को बोला, क्यों रो रहे हो, क्या परेशानी है? पर नंदगांव गया मैं और इतना पुकारा, कोई जवाब ही नहीं मिला, एकदम निराश हो गया मैं। अच्छा कोई बात नहीं, दोबारा जाओ नंदगांव और अभी कृष्ण का नाम मत लो, वहां जाके राधे राधे पुकारो, बोलो राधे राधे। तुमको राजीव लगा, अरे पुकारना तो उनको है और ये कह रहे वहीं जाओ और मुझे पुकारो, थोड़ा सा समझ में नहीं आया। बोला कोई बात नहीं, ट्राई तो करने में नुकसान नहीं, पहला अटेम्प्ट फेल हो चुका है, दूसरा अटेम्प्ट भी कर सकते हैं अलग तरीके से। तो नंदगांव पहुंचे और रा और धे पूरा भी नहीं हुआ, भाग के आए, धे तो बाद में पूरा हुआ लेकिन रा बोलते ही भाग के आए, आगे का तो टाइम है अभी बोलने के लिए। तुरंत मोर को गोद में लिया कृष्ण भगवान ने और ऐसा प्रेम से दुलारा उसको, तो एकदम ऐसे कांपने लगा वो आनंद से, ऐसे थरथराने लगा, उसके सारे पंख जो है ना ऐसे झड़ने लगे आनंद से। तो उस मोर पंख को उठा के सर पे धारण किया भगवान ने। तो जो इतना कठिन था, इतना कोशिश किया, कोई यश नहीं मिला, लेकिन राधा रानी का नाम पुकारते ही कौन भाग के आए, कृष्ण भगवान भाग के आए। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण बोलते हैं, खाली कृष्ण नहीं बोलते हैं, पहले हरे ये पुकारते हैं। हरे कौन है, राधा रानी है, हरा उनका नाम है, हरा शक्ति, और हरे उनका पुकारना है, मतलब हरे संबोधन है वो। तो हम लोग हमेशा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो सीताराम लक्ष्मी नारायण शिव पार्वती सीताराम राधेश्याम है ना, पहले किसका नाम लेते हैं, शक्ति का नाम पहले लेते हैं और इष्ट का नाम बाद में लेते हैं। शक्ति के माध्यम से ही इष्ट को प्राप्त किया जाता है, डायरेक्टली प्राप्त नहीं कर सकते, शक्ति की कृपा होगी तो ही इष्ट प्राप्त हो सकते हैं। तो वो उनका नाम क्या है, मदन मोहन मोहिनी। राधा रानी का नाम मदन मोहन मोहिनी है, तो मदन को मोहने वाले हैं उनको मोह लेती है, वो पूरे पागल हो जाते हैं उनके लिए। तो उनका सहारा जब लेंगे तो इनका सहारा बहुत आसानी से प्राप्त होता है। तो अभी हम इनके चरणों में आए हैं, उनके पास राधा रानी खड़ी है। मैंने बताया था ना आपको कि दो दो राधा रानी की मूर्ति आ गई जयसिंह की तरफ से, तो राधा रानी ने स्वप्न दिया, बताया कि एक ललिता है और एक मैं हूँ। तो यहाँ पर भी जो राइट में खड़ी है वो ललिता है, लेफ्ट में खड़ी राधा रानी है। तो आप प्रणाम कीजिए, दर्शन कीजिए, वंदन कीजिए और भिक्षा मांगिए कि हमको बार बार शायद आपके पास आने को मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत दूर है और टाइम भी नहीं होता है, एक ही बार आके फर्स्ट एंड फाइनल हाँ आपके पास अर्जी दे देते हैं कि आप हमें अपना बना लो। दुनिया का जो है वो कभी कभी क्या होता है ना, विदाउट सर्जरी इट्स नॉट पॉसिबल टू रिमूव सम डिसीज है ना, आप लोग करते हैं ना सर्जरी एनेस्थेसिया देके, क्योंकि व्हेन देयर इज नो अदर उपाय देन यू एनेस्थेटाइज एंड यू कट इट एंड यू थ्रो इट आउट। तो कभी कभी दवाई से काम नहीं चलता है तो फिर सर्जरी करनी पड़ती है। तो ये सर्जरी आप कर दो, ऐसे बोल दो कि हमने तो ऐसा है ना कि वही शराबी था और वो बार बार ही साधु के पास आया, महाराज महाराज मुझे शराब छुड़ा दो, महाराज शराब छुड़ा दो। तो महाराज ने बताया वो सारा चीज, फिर भी आया महाराज शराब छुड़ा दो, महाराज शराब छुड़ा दो, अनेक बार आया वो। तो एक बार जब बहुत बार आने के बाद एक बार और आया तो वो आते ही महाराज ही उठे भाग के, ऐसे भाग गए अपने आश्रम से और जाके एक पेड़ को पकड़ लिया, बोलो छुड़वा दो मेरे को पेड़ से छुड़वा दो। समझ में आया आपको? हाई से आते ही भाग गए महाराज और एक पेड़ को ऐसा लिपट के पकड़ के बोल रहे हैं महाराज छुड़वा दो पेड़ से छुड़वा दो। शराबे बोलता है क्या महाराज पागल हो गए क्या, खुद पकड़ के रखे बोल रहे छुड़वा दो। वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आपने पकड़ के रखा है और आप मुझे बोल रहे छुड़वा दो। छोड़ना आपको ही है, आप छोड़ते नहीं हो, मतलब क्या करें लिप्त ही ऐसे हो गए। ऐसे ही हम लोग लिप्त हैं भौतिक दुनिया में, डायलॉग तो बहुत मारते हैं हम लोग, बहुत सारा, लेकिन छोड़ नहीं सकते उसको छोड़ नहीं सकते, तो उस टाइम सर्जरी करना पड़ता है, थोड़ा तकलीफ होता है। हाँ, तो हमारे डॉक्टर साहब उनको फिर एनेस्थीसिया दे देते हैं और फिर भूल देकर उसमें जो निकालना है वो निकाल लेते हैं, फिर वो भूल खत्म होती है और फिर उसके बाद में वापस थोड़ा दर्द होता है, लेकिन उतना नहीं होता है। अगर बिना एनेस्थीसिया के काटते तो कितना दर्द होता, उतना नहीं होता है। तो ये एनेस्थीसिया क्या है, ये गुरु की कृपा है। तो गुरु की कृपा इज लाइक एनेस्थीसिया, उनके कृपा के अंदर कौन से ऑपरेशन किए जा रहे हैं आपके अंदर वो आपको समझ में नहीं आता है और आसानी से हम लोग मुक्त हो जाते हैं। तो एनेस्थीसिया इज गुरुज मर्सी, गुरु कृपा, और सर्जरी फिर भगवान कर देते हैं अंदर से। तो आप पुकारो, बोलो तो सही आपको क्या चाहिए। अरे चाहेंगे क्या, चाहना है पता नहीं है तो क्या बोलेंगे उनको, क्या चाहते हैं हम। तो सीखना है कि क्या चाहना है पहले, नो फर्स्ट व्हाट टू आस्क फॉर एंड देन गो एंड आस्क विद द फुल हार्ट, देन देयर बी रिस्पॉन्स। तो फर्स्ट इज नॉलेज, हाँ, अज्ञान से आपको ज्ञान प्राप्त करना है और ज्ञान प्राप्त होने के बाद में क्या पूछना है, ये नहीं भगवान मदन मोहन जी मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, अच्छी लड़की दिला दो, बुढ़ा हो रहा है बेचारा, बाल सफेद होने लगे उसके, अभी कितने दिन तड़प रही हूँ मैं, भी मरने जा रही हूँ, मुझे अभी पहले उसकी शादी देखने दो। ये भी बोल सकते हैं भगवान को, शायद पूरी भी करेंगे आपकी इच्छा, क्या मालूम, लेकिन ये बेकार की मांग है। भगवान मेरे पोते को 12th में मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल रहा है, इतना एग्जाम दिया, 4 बार सीईटी, 4 साल बर्बाद किया, फिर भी अभी तक एडमिशन नहीं मिल रहा है, हर बार नंबर कम आते हैं उसके, मतलब पीछे आते बहुत। ऐसे मांग करने की जगह है ही नहीं ये, यू आर वेस्टिंग योर टाइम इफ यू आस्क ऑल दीज थिंग्स, ऑल टेम्पररी थिंग्स, मांग के क्या फायदा है आपको, है ना। इसलिए ये मांगो, भगवान आपके चरणों की भक्ति दो, ये माया से छुटकारा दिला दो, एक ही बार माया से मुक्त कर दो, सर्जरी करो, आपके चरणों में रखो, मैं आपके पास भिक्षा बनकर, भिक्षुक बनकर आया हूं। देखो भिखारी आया मोहन तेरी गली में, देखो भिखारी आया मोहन तेरी गली में, श्रद्धा के फूल लाया मोहन तेरी गली में। मोहन की गली में तो आए हैं ना, अभी आप भिक्षा मांगो, हाँ थोड़ा सा भिखारी बनने का भी प्रयास करो, इतना रुआब से घूमते हैं हम लोग हमेशा, लेकिन एक्चुअली जो भिक्षुक बन सकता है ना हृदय से, वही उनको अट्रैक्ट कर सकता है। तो कुछ समय के लिए बन जाओ, उसमें क्या है, कोई देखने वाला नहीं है यहाँ पर, आप डोंट वरी, सब अपने लोग हैं, सब एक ही टाइप के लोग हैं, भिक्षा मांगने वाले, डोंट वरी। भिखारियों के झुंड में कोई भीख मांगने को शर्म नहीं आती है, अकेले भीख मांगेगा थोड़ा शर्म आएगा उसको, लेकिन भिखारियों के झुंड में मांगेगा तो क्या है, लॉट का माल है पूरा, डोंट वरी, जस्ट गो एंड बैग बैग एंड बैग एंड बैग, रो रो के पुकारो, रो रो के भिक्षा मांगो। वो कैसे बरसाने में वृंदावन में कैसे होते हैं, दे दे बाबा, दे 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 करके ना 1 किलोमीटर चल के आएंगे आपके पीछे, 1 किलोमीटर तक आएंगे, चिल्लाएंगे भी नहीं, एक ही मंत्र बोलेंगे, दे दे बाबा, दे 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 दे, बाद में आप परेशान हो जाएंगे, बोला ले जा अभी तू, आप तंग आ जाएंगे, लेकिन वो आपको आपसे लेके रहेंगे, 1 किलोमीटर चलेंगे, 2 किलोमीटर चल सकते हैं, एंड तक बाबा आप ही बोलो, आपके पास ही मिलेगा, आप दे दे बाबा दे दे। चिकाटी बोलते हैं उसको मराठी में, चिकाटी, एकदम टेनेसिटी, हाँ लगातार छोड़ते नहीं है, जब तक नहीं मिलेगा तब तक पुकारते रहते हैं। वैसे आप पुकारो जरा थोड़ा सा, बचपन में कैसे पापा पापा चाहिए मुझे, खिलौना चाहिए चाहिए, दरवाजा फटेंगे, सर पटकेंगे, नीचे लेट रहेंगे, लटपोट करेंगे, पाँव ऊपर करेंगे, आंसू बहाएंगे, नकली आंसू, लेकिन खिलौना लेके ही रहेंगे। वैसे जाके वहां पर कोई सरपटकना है तो पटको, नीचे गिरो, रो, को भी पाव झाड़ना है पाव झाड़ो, जो भी करना है करो, लेकिन मांगो। हाँ ओके, हरे कृष्णा, एक बार पुकारो सब लोग हृदय से पुकारो, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय हो, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।